एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं का इस ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी किताब जो शायद सीखने को लेकर हमारा नजरिया बदल दे।
बिल्कुल, किताब का नाम है अ माइंड फॉर नंबर्स, हाउ टू एक्सेल एट मैथ एंड साइंस, और इसकी लेखिका है बारबरा ओकले। पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मैथ्स या साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है।
सही कहा, ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी लगा हो कि कोई विषय यू नो उसके बस का नहीं है, या फिर जो कुछ नया या मुश्किल सीखना चाहता है और उसका कोई बेहतर तरीका ढूंढ रहा है।
हाँ, और ये उस आम सोच को भी चैलेंज करती है कि भाई टैलेंट तो बस पैदाइशी होता है।
एग्जैक्टली।
और देखिए, लेखिका जो है बारबरा ओकले, उनकी खुद की कहानी कितनी कमाल की है। वो बताती हैं कि स्कूल में तो उन्हें गणित और विज्ञान से मतलब सख्त नफरत थी।
हाँ, उनका इंटरेस्ट तो लैंग्वेज में था।
बिल्कुल, उन्होंने रूसी सीखी, आर्मी में ट्रांसलेटर का काम किया, सोचिए।
लेकिन फिर करीब 26 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वो इस डर का सामना करेंगी, जिस चीज से आप हमेशा भागते रहे हो उसी में महारत हासिल करने की ठान लेना, ये बड़ी बात है।
और उन्होंने कर दिखाया, मतलब एकदम बेसिक मैथ से शुरू किया और फिर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में पीएचडी की, प्रोफेसर बनी।
जी, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो समझती हैं कि क्या मुश्किलें आती हैं जब कोई मैथ सीखने की कोशिश करता है। वो फीलिंग्स जानती हैं।
सही, वो कोई ऐसी नहीं है जो बचपन से जीनियस थी। उन्होंने तो सीखा है कि सीखा कैसे जाता है ना?
बिल्कुल, उन्होंने वो टेक्निक्स खुद इस्तेमाल किए हैं जिनके बारे में वो लिखती हैं, और इसीलिए उनका वो ऑनलाइन कोर्स लर्निंग हाउ टू लर्न वो इतना पॉपुलर हुआ दुनिया भर में। वो सच में समझती हैं कि सीखने में रुकावटें क्या होती हैं। तो ये किताब आखिर है किस बारे में? संक्षेप में कहें तो ये दिमाग के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है, खासकर उन सब्जेक्ट्स के लिए जो मुश्किल लगते हैं। और किताब का जो दिल है वो ये सोच है कि मैथ्स ब्रेन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये एक मिथक है।
सही कहा, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग मोड में काम करता है। एक है केंद्रित मोड यानी फोकस मोड,
और दूसरा
है विस्तृत मोड यानी डिफ्यूज्ड मोड। और असली कमाल मतलब इफेक्टिव लर्निंग वो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में है।
अच्छा,
लेखिका बताती हैं कि सीखना जो है वो दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और ये सही तकनीक से कोई भी कर सकता है।
और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, है ना? किताब में प्रैक्टिकल तरीके भरे पड़े हैं।
हाँ, बहुत सारे, जैसे मेमोरी कैसे इम्प्रूव करें, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें, एग्जाम के डर को कैसे हैंडल करें, और सबसे जरूरी, कैसे सच में समझें, सिर्फ रटे नहीं।
सही, ये तो जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए पूरी गाइड हो गई।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरू करते हैं दिमाग के इन दो तरीकों से। ये केंद्रित मोड क्या है?
फोकस मोड।
हाँ, फोकस्ड मोड, ये वो स्टेट है जब हम किसी जानी पहचानी चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं।
जैसे
मान लीजिए कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसका तरीका हमें पता है। लेखिका इसकी तुलना टॉर्च की रोशनी से करती हैं।
टॉर्च की रोशनी मतलब
जो एक छोटी सी जगह पर बहुत तेज, बहुत फोकस्ड रोशनी डालती है। हमारी सोच एक तय रास्ते पर सीधी लाइन में चलती है।
ओके, तो फिर ये विस्तृत मोड यानी डिफ्यूज्ड मोड क्या हुआ?
डिफ्यूज्ड मोड दिमाग की ज्यादा रिलैक्स्ड फैली हुई अवस्था है, जैसे जब हम सीधे सीधे ध्यान नहीं दे रहे होते, टहलते हुए, नहाते हुए, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए।
अच्छा, डे ड्रीमिंग जैसा?
हाँ, कुछ वैसा ही। ये फ्लडलाइट की तरह है जो बड़े एरिया पर हल्की रोशनी डालता है, बड़ी पिक्चर दिखाता है। इस मोड में दिमाग अलग अलग आइडियाज के लीच नए कनेक्शंस बना पाता है।
ये तो इंटरेस्टिंग है। तो मतलब सिर्फ फोकस करना ही काफी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, खासकर जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम हो या कुछ नया सीखना हो, हमें इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करते रहना होता है।
स्विच करना मतलब?
मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं, दिमाग एक ही तरह से सोच रहा है, हल मिल नहीं रहा। लेखिका इसे आइंस्टिलोंग कहती हैं।
आइंस्टिलोंग मतलब एक ही सोच में फंस जाना।
हाँ, जैसे आप एक ही गलत दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे हो।
ओके,
ऐसे में जरूरत होती है फोकस्ड मोड से हटकर डिफ्यूज्ड मोड में जाने की, ब्रेक लेना, कुछ और करना।
अच्छा, तो ब्रेक लेना भी प्रोडक्टिव हो सकता है।
हाँ,
क्योंकि अक्सर उसी ब्रेक के दौरान जब आप कुछ और कर रहे होते हैं, आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है और फिर अचानक से बत्ती जलती है, कोई नया आइडिया आ जाता है।
वाओ, तो फोकस भी जरूरी है और दिमाग को थोड़ा भटकने देना, ब्रेक लेना, वो भी उतना ही जरूरी है। कमाल है। अच्छा, अगला जो बड़ा आइडिया है किताब में वो है चंकिंग।
नाम थोड़ा अजीब है, पर ये सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।
चंकिंग, ये क्या होता है?
चंक का मतलब है जानकारी का एक ग्रुप, जो प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में एक सिंगल यूनिट बन जाता है।
अच्छा,
जैसे
कोई उदाहरण?
जैसे साइकिल चलाना, जब हम सीखते हैं तो पेडल, बैलेंस, हैंडल सब पर अलग अलग ध्यान देना पड़ता है ना?
हाँ, बहुत मुश्किल लगता है शुरू में।
बिल्कुल, पर एक बार सीख गए तो ये पूरा प्रोसेस एक चंक बन जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। लेखिका कहते हैं कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने का मतलब है अपने दिमाग में ऐसे हजारों चंक्स की एक लाइब्रेरी तैयार करना।
वाह, हजारों चंक्स की लाइब्रेरी। तो ये चंक्स बनते कैसे हैं?
इसके तीन मेन स्टेप्स हैं। पहला, केंद्रित ध्यान, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन का चंक बनाना है उस पर पूरा फोकस, ध्यान भटकाना नहीं।
ठीक है।
दूसरा है समझ, सिर्फ रटना नहीं बल्कि उस आइडिया के पीछे का लॉजिक, उसका मतलब समझना।
ओके, समझना।
और तीसरा है अभ्यास और संदर्भ, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना ताकि वो पैटर्न दिमाग में एकदम पक्का हो जाए, और साथ ही ये देखना कि ये चंक बड़ी पिक्चर में, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे फिट होता है।
तो फोकस, समझ और प्रैक्टिस।
हाँ, और जब ये चंक्स बन जाते हैं तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, उस पर लोड नहीं पड़ता, वो जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से ऑटोमेटिकली आ जाती है।
अच्छा, इसीलिए खिलाड़ी और म्यूजिशियन इतनी प्रैक्टिस करते हैं, वो असल में अपने स्किल्स को चंक्स में बदल रहे होते हैं।
एग्जैक्टली।
अब आते हैं उस चीज पर जिससे शायद हम सब परेशान रहते हैं, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेखिका कहती हैं कि ये सीखने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है, पर ये होता क्यों है? क्या हम बस आलसी हैं?
नहीं, लेखिका के अनुसार ये आलस की बात नहीं है, ये दिमाग का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है।
डिफेंस मैकेनिज्म मतलब?
मतलब ये कि जब हम किसी मुश्किल या उबाऊ काम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग के पेन सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें थोड़ी तकलीफ महसूस होती है।
अच्छा, काम सोचने भर से?
हाँ, और हमारा दिमाग इस तकलीफ से बचना चाहता है, तो हम फौरन अपना ध्यान किसी आसान या मजेदार चीज पर लगा लेते हैं, जैसे फोन चेक करना या कुछ और।
हाँ, ये तो होता है।
और जैसे ही हम ध्यान हटाते हैं वो तकलीफ वाली फीलिंग चली जाती है, हमें एक तरह का इनाम मिलता है, वो टेम्परेरी रिलीफ, और ये साइकिल संकेत, तकलीफ, रूटीन, ध्यान भटकाना, इनाम, राहत, ये एक आदत बन जाती है।
ओहो, तो ये एक आदत है, इससे निपटे कैसे फिर?
एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, नतीजे प्रोडक्ट के बजाय प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना।
प्रोसेस पर ध्यान देना, कैसे?
मतलब ये सोचने के बजाय कि मुझे ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, जो कि बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है, ये सोचें कि मैं बस अगले 25 मिनट फोकस करके पढ़ूंगा।
अच्छा, छोटा टारगेट।
हाँ, इससे वो काम करने का शुरुआती दर्द कम हो जाता है और शुरू करना आसान हो जाता है।
यहीं पर वो पोमोडोरो टेक्निक आती है ना?
बिल्कुल, 25 मिनट फुल फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ये छोटा सा मैनेजेबल गोल टाल मटोल से लड़ने में बहुत मदद करता है। और एक और टिप, बस शुरू कर दो, कहते ना जस्ट स्टार्ट, अक्सर शुरू करने के बाद वो हिचक अपने आप कम हो जाती है।
हाँ, ये बात तो सही है, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है कई बार।
किताब में एक और बहुत जरूरी वार्निंग है, जिसे लेखिका कहती हैं योग्यता का भ्रम या इल्यूजन्स ऑफ कॉम्पिटेंस।
योग्यता का भ्रम, ये क्या है?
ये वो स्थिति है जब हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं या हमें कोई चीज आ गई है, पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ उस जानकारी से परिचित हुए होते हैं। जैसे?
जैसे किसी चैप्टर को बार बार पढ़ना
या हाईलाइटर लेकर पूरी किताब रंग देना।
हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं, लगता है कि मेहनत हो रही है।
हाँ, लगता तो है, पर ये पैसिव लर्निंग है, इससे असली समझ नहीं बनती। असली सीखना तब होता है जब हम सक्रिय याद, एक्टिव रिकॉल करते हैं।
एक्टिव रिकॉल मतलब?
मतलब किताब या नोट्स बंद करके उस जानकारी को अपने दिमाग से वापस लाने की कोशिश करना। क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में समझा सकते हैं? क्या आप बिना देखे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं?
अच्छा, खुद को टेस्ट करना।
एग्जैक्टली। ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, पर यही सबसे ज्यादा असरदार तरीका है। इसी से पता चलता है कि बात दिमाग में बैठी है या सिर्फ आंखों के सामने से गुजरी है।
और कोई तरीका है इस भ्रम से बचने का?
हाँ, एक और अच्छी तकनीक है, इंटरलीविंग।
इंटरलीविंग
इसका मतलब है एक ही तरह की प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करने के बजाय अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करना।
अच्छा, जैसे मैथ्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूले के सवाल न करके अलग अलग चैप्टर के सवाल मिक्स करके करना।
बिल्कुल, ये ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग को सोचना पड़ता है कि यहाँ कौन सा तरीका लगेगा, लेकिन इससे जो समझ बनती है वो ज्यादा गहरी और फ्लेक्सिबल होती है। आप सीखते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है।
कई बार लोग सोचते हैं कि याद करना मतलब रटना और समझना ये दो अलग चीजें हैं, शायद एक दूसरे के ऑपोजिट भी, पर किताब ऐसा नहीं मानती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखिका जोर देती हैं कि याददाश्त और समझ ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
अच्छा, कैसे?
देखिए, अगर हमें बेसिक डेफिनेशंस, फॉर्मूले या फैक्ट्स याद ही नहीं होंगे तो हर बार उन्हें सोचने में हमारी वर्किंग मेमोरी खर्च हो जाएगी, फिर हम ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्चुअल चीजों पर फोकस कैसे करेंगे?
हाँ, ये बात तो है।
तो कुछ चीजें याद होना जरूरी है ताकि हमारी वर्किंग मेमोरी फ्री रहे और हम गहरी सोच पर ध्यान लगा सकें।
तो याददाश्त बढ़ाने के भी कुछ स्मार्ट तरीके बताती हैं लेखिका, रटने के अलावा?
हाँ बिल्कुल, एक बहुत जरूरी तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन।
स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराना।
हाँ, मतलब जानकारी को एक बार याद करके छोड़ना नहीं, बल्कि बढ़ते हुए टाइम गैप पर उसे रिवाइज करना। जैसे आज पढ़ा, फिर कल, फिर तीन दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, इस तरह से। इससे वो जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत मजबूती से बैठ जाती है।
ये तो फ्लैश कार्ड ऐप्स वगैरह में यूज होता है शायद।
हाँ, कई ऐप्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग तकनीक है मेमोरी पैलेस।
मेमोरी पैलेस ये क्या है?
इसमें आप जिन चीजों को याद करना चाहते हैं उन्हें किसी जानी पहचानी जगह, जैसे अपने घर के कमरों या किसी रास्ते के साथ जोड़ते हैं। आप मेंटली उस जगह पर चलते हैं और चीजों को वहां रखते जाते हैं।
वाह, ये कैसे काम करता है?
हमारी जो स्थानिक याददाश्त होती है, मतलब जगह को याद रखने की क्षमता, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये तकनीक उसी का फायदा उठाती है। लिस्ट या फैक्ट्स याद करने के लिए ये कमाल का तरीका हो सकता है।
और वो रूपक और उपमाओं वाली बात भी थी शायद?
हाँ, रूपक और उपमा है, मेटाफर्स एंड एनालॉजीज। किसी नए या मुश्किल कॉन्सेप्ट को किसी आसान जानी पहचानी चीज से जोड़कर समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने फोकस और डिफ्यूज मोड के लिए टॉर्च और फ्लड लाइट की उपमा इस्तेमाल की। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में टिका देता है।
किताब का एक बहुत ही फंडामेंटल मैसेज है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में।
हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
ये कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है।
बिल्कुल, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिमाग में सचमुच नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, पुराने मजबूत होते हैं। हम लिटरली अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं।
ये जानना ही कितनी उम्मीद देता है।
देता है ना, और इसीलिए विकासवादी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट इतना जरूरी है।
ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम बेहतर हो सकते हैं।
हाँ, ये सोचना कि मैं मैथ्स वाला नहीं हूं या मुझसे ये नहीं होगा, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि इंटेलिजेंस या टैलेंट फिक्स नहीं है, उसे मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाया जा सकता है।
तो कोशिश और तरीका मायने रखता है, ना कि सिर्फ पैदाइशी टैलेंट।
एग्जैक्टली, और इस सफर में गलतियां और मुश्किलें आएंगी ही, उन्हें फेलियर की तरह देखने के बजाय सीखने का एक जरूरी हिस्सा समझना चाहिए।
हर गलती एक फीडबैक है कि कहां सुधार करना है।
बिल्कुल, और अपनी सीखने की स्पीड का भी सम्मान करना जरूरी है। कोई रेस कार की तरह तेज सीखता है तो कोई पहाड़ पर चढ़ने वाले की तरह धीरे धीरे पर गहराई से समझता है। दोनों ही तरीके ठीक है।
और लेखिका ये भी कहती है कि सिर्फ कैसे, हाउ पर ही नहीं, क्यों, वाई पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझना।
हाँ, समीकरणों को सिर्फ रटना नहीं, उन्हें समझना कि वो क्या बता रहे हैं, किस नियम को दर्शा रहे हैं, इसे वो कहती हैं कविता की तरह देखना। इससे सहज ज्ञान, इंट्यूशन डेवलप होता है, जो सिर्फ नियम जानने से कहीं ज्यादा गहरा है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के कुछ सबसे अहम पॉइंट्स निकालें, तो मेरे लिए पहली चीज जो बहुत जरूरी लगी वो है सोचने के दो तरीकों, फोकस और डिफ्यूज का बैलेंस।
हाँ, ये समझना कि दोनों जरूरी हैं।
हाँ, हम अक्सर या तो लगातार स्ट्रेस में फोकस करने की कोशिश करते हैं या फिर पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ये जानना कि ब्रेक लेना, आराम करना, दिमाग को भटकने देना भी सीखने का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात जो आपने भी कही वो है ग्रोथ माइंडसेट। ये आइडिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ वाली सोच को चैलेंज करना।
हाँ, कि हम कोशिश और सही तरीके से कुछ भी सीख सकते हैं।
ये बहुत पावरफुल है, खासकर हमारे देश में जहाँ कई बार मान लिया जाता है कि भाई ये तो गॉड गिफ्टेड है। ये किताब बताती है कि नहीं, मेहनत और सही तकनीक ज्यादा मायने रखती है।
तीसरी बात जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी वो है टालमटोल से निपटने का तरीका। ये समझना कि ये एक सीखी हुई आदत है, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं।
हाँ, और वो प्रोसेस पर फोकस करने वाली बात, पोमोडोरो टेक्निक।
बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सबके लिए बहुत काम की चीज है।
और चौथी, असली सीखने और सिर्फ जानने के भ्रम में फर्क करना, वो एक्टिव रिकॉल वाली बात।
हाँ, खुद को ईमानदारी से जांचना कि वाकई कितना समझ आया है। सिर्फ पढ़ने या हाईलाइट करने से काम नहीं चलता।
सही कहा, ये रटने वाली पढ़ाई से हटकर सच में गहरी समझ बनाने पर जोर देता है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो कहती हैं कि सीखने में सबसे नुकसानदायक वाक्य है, मैं गणित वाला इंसान नहीं हूँ।
हाँ, ये एक सोच ही कितने दरवाजे बंद कर देती है।
और वो टॉर्च और फ्लडलाइट वाली उपमा, फोकस्ड सोच गहराई देती है, डिफ्यूज सोच बड़ी पिक्चर, दोनों का बैलेंस चाहिए।
ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का भी तरीका हो सकता है।
बिल्कुल। और वो चेतावनी कि अगर आप बिना देखे याद नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं जानते, ये थोड़ा कड़वा लग सकता है पर अपनी लर्निंग को चेक करने का बहुत सॉलिड तरीका है।
हाँ, और टालमटोल को एक लत की तरह समझना, वो टेम्पररी रिलीफ कैसे उस आदत को और पक्का करता जाता है, इसे समझने से ही उसे तोड़ने की शुरुआत हो सकती है।
कि ये विल पावर की कमी नहीं, एक सीखा हुआ पैटर्न है।
तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत काम की है।
हाँ, जैसे एग्जाम की तैयारी में स्पेस्ड रेपिटिशन और एक्टिव रिकॉल यूज करना।
बिल्कुल, मुश्किल टॉपिक समझने के लिए फोकस सेशन के बाद ब्रेक लेना ताकि डिफ्यूज मोड अपना काम कर सके, और टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो,
और प्रोफेशनल्स के लिए भी।
जरूर, कोई नई स्किल सीख ली है उसे छोटे छोटे चंक्स में तोड़कर सीखिए। किसी मुश्किल प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए, टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सबको थोड़ा स्पेस दीजिए डिफ्यूज मोड में सोचने के लिए।
बड़े प्रोजेक्ट्स में टालमटोल से बचने के लिए भी वही, प्रोसेस पर ध्यान, पोमोडोरो।
हाँ, और पर्सनल लाइफ में भी, मान लीजिए कोई नया शौक सीख रहे हैं जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या लैंग्वेज,
तो इंटरलीविंग काम आ सकती है, अलग अलग चीजें मिक्स करके प्रैक्टिस करना।
बिल्कुल, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग प्रैक्टिस, सब मिक्स करके। या फिर कुछ याद रखना है, शॉपिंग लिस्ट या नए लोगों के नाम,
मेमोरी पैलेस ट्राई कर सकते हैं, या कोई फनी कहानी बना सकते हैं,
क्यों नहीं। और टीचर्स या पेरेंट्स के तौर पर भी, हम बच्चों को मुश्किलों से जूझने, गलतियों से सीखने, एक्टिव रिकॉल करने और ब्रेक लेने के लिए एनकरेज कर सकते हैं।
उन्हें स्मार्ट होने के टैग से ज्यादा लर्नर बनने में मदद कर सकते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे रहा इस किताब से वो शायद यही है कि आराम करना या दिमाग का इधर उधर भटकना भी सीखने का एक वैलिड और जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर इसे टाइम वेस्ट समझते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ी शिफ्ट है सोच में।
और ये जानना कि टालमटोल एक पैटर्न है, मेरी कोई कमी नहीं, इससे गिल्ट कम होता है और उसे बदलने का रास्ता दिखता है।
सही काम। और मेरे लिए वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात सबसे ज्यादा सरदार रही। ये जानना कि हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं, ये बहुत उम्मीद देता है। और एक्टिव रिकॉल, अपनी समझ को ईमानदारी से परखने का एक टूल मिल गया। अब कोई बहाना नहीं कि लग तो रहा है समझ आ गया।
हाँ, सही है। अच्छा, तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सीखने की ये जो तकनीकें हैं, ये सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही सीमित है,
या फिर इनका इस्तेमाल जिंदगी के दूसरे एरिया में भी हो सकता है, जैसे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने में, या शायद रिश्ते बेहतर करने में, या खुद को और गहराई से समझने में?
सोचने वाली बात है, इस पे सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।